کرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میں نے زندگی میں خود بھی بہت سخت حالات دیکھے تھے، مگر جس قدر مشکل حالات مکہ میں تھے، ایسے حالات کو تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی. ان حالات میں یا تو انسان کلمہ چھوڑ دے، تب تو اس کے لیے سب اچھا تھا، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو اس کے لیے نہ دن کو چین تھا اور نہ رات کو، نہ گھر میں سکون نہ باہر، نہ اپنوں میں کوئی پذیرائی اور نہ پرایوں میں. ایسا انسان جدھر جاتا تھا سب کے لیے ایک ترنے والا ہوتا تھا، کہ جو چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ ظلم روا رکھے. اس ماحول میں سب کے لیے جائز تھا، بلکہ جائز تو کیا پسندیدہ تھا، کہ کون کتنا زیادہ ایک کلمہ گو کو ستاتا ہے، اور اس میں کون کتنا آگے بڑھ جاتا ہے. گویا ایک مقابلہ ہے جس میں ہر ایک دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ ظلم کر سکتا ہوں. مگر نتیجہ سب کا ایک ہے، اور وہ یہ کہ یہ تمام لوگ ناکام ہیں. کہیں سے بھی کسی کو بھی کسی توحید پرست کے ایمان کو ہلانے میں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی. میں آج چلتے چلتے جب حرم پہنچی تو دیکھا یہاں کا عجیب ہی سماں ہے، ایک گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ بھی حرم کے احاطے میں. لوگ مل کے ایک نوجوان کو گھونسوں سے، لاتوں سے، مکوں سے مار رہے ہیں، مگر شاباش ہے اس نوجوان کی کہ وہ بھی کم نہیں ہے، یوں شیر کی طرح کود کود کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے. جتنا وہ مارتے ہیں، یہ اکیلا ہی ان سب کو اتنا ہی زوردار جواب دیتا ہے. نہ وہ ہارتے ہیں نہ یہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ نوجوان نہ صرف دلیر ہے، بہت طاقتور، مضبوط اور پھرتیلا بھی ہے. یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو چپ کر کے مار کھاتے رہیں. لگتا ہے اس کو کوئی مارے گا تو بچ کے نہیں جائے گا. وہ کہہ رہا تھا جو مرضی کر لو، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو ہم تمہارے لیے مکہ کو چھوڑ جاتے یا تم ہمارے لیے اسے چھوڑ جاتے. ایک شخص دور کھڑا چلا رہا تھا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا. لوگوں میں ہر طرف جیسے کوہرام سا مچا ہوا تھا. جس کو دیکھو وہ منہ میں انگلیاں دبائے حیران اور پریشان تھا. میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، عمر میرے ہیرو، یہ وہ ہیں، یہ مسلمان ہو گئے. میرے جذبات میرے قابو میں نہ رہے. دل چاہ رہا تھا ایک نعرہ تکبیر بلند کروں کہ آج عمر مسلمان ہو گئے، اب تم لوگ دیکھنا. ارے اب تم مسلمانوں کو اس طرح نہیں ستا سکتے، ابھی 3 دن پہلے تو حمزہ اسلام لائے اور اب عمر لے آئے. واقعی کیوں نہ ان مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑتے، یوں ہی نہیں ان کو آج سانپ سونگا ہوا ہے کہ یہ ہو کیا گیا. میں نے اب کی بار آنکھیں بند کی تو उसके बाद एक ऐसा मंजर मेरे सामने आया जिसको देखने के लिए शायद इस दीन के मतवाले लाखों भी खर्च कर दें तो कम है। मैंने देखा मुसलमान जो लगभग 40-50 होंगे, दो सफें बनाए में हरम की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके साथ मेरे प्यारे नबी भी हैं। एक सफ में हमजा हैं और दूसरी में उमर हैं। सबने बाजुओं में बाजू डाले हुए। और आज पहली दफा मुझे लग रहा है कि इस्लाम को इज्जत मिली है। सब सीना ठोक के हरम की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके कदमों की रफ्तार से चक्की के आटे की तरह हल्का हल्का गुबार उड़ रहा है। ये छोटी सी जमात है मगर इनका यकीन कितना पुख्ता है, इनका ईमान कैसा है। बेधड़क बेजिगरी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब ये हरम के करीब आ गए तो कुरैश की हालत देखने वाली थी। यूं लग रहा था आज इन पे कोई बड़ा सदमा टूट पड़ा है। सबके चेहरों पे ऐसा गम छाया कि जैसा कभी पहले ना देखा हो। ये मुसलमान काबा के गिर्द हलका बनाकर बैठ गए। अब इन्होंने तवाफ शुरू किया और पहली बार सबने काबा के पास नमाज पढ़ी है। हाँ, कुछ लोग लड़ने के लिए आगे बढ़े मगर उन्होंने मुंह की खाई, बाकी फिर कोई जुर्रत ही ना कर सका। जहां अल्लाह का शेर हमजा हो और उमर बिन खत्ताब हो, वहां कौन अपनी शामत लाएगा। ये तो लगता है इस्लाम की फतह का दिन है। मुसलमानों के लिए कितना खुशी का दिन है, इसका अंदाजा वही कर सकता है जो इन हालात में रहता हो। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद की तो देखा मैं अबू तालिब के घर पे हूं। अबू तालिब सख्त फिक्र में बेचैन घूम रहे हैं। हालात बहुत तेजी से बदले हैं। यूं लगता है मेरे नबी के बारे में परेशान है। पिछले दिनों कितने ही वाकयात तो हुए हैं, कभी इनके दोस्त जो बड़े बड़े सरदार थे इनसे आके सौदेबाजी करना चाहते हैं मेरे नबी के बारे में, कभी इनको प्रेशराइज करने का हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, कभी इनको पता चलता है कि इनके भतीजे का सर कुचलने के लिए अबू जहल भारी पत्थर लेके खड़ा हो गया, कभी पता चला कि उकबा ने चादर इनके भतीजे के गले में डाल के गला घोंटने की कोशिश की। आखिर ये समझदार आदमी है, इनको अच्छी तरह पता है कि अब मुखालफतों के इस तूफान के आगे ये कब तक बंद बांधे खड़े रहेंगे। ये लगता है अब इनके बस की बात नहीं रही। मैं देख रही थी ये इतने बूढ़े भी हो चुके थे, अब लगता है इनको समझ नहीं आ रहा कि इन हालात में ये करें तो करें क्या, कैसे अपने भतीजे की मजीद हिफाजत करें। मुझे इनके लिए बहुत फील हो रहा था, ये मेरे नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं और चाहते भी हैं कि उनको कांटा तक ना छुभे, मगर इनके बस में तो कुछ भी नहीं। इतने में मैंने देखा मेरे प्यारे नबी घर में दाखिल हुए। अबू तालिब ने उनको देखा तो बोले, मेरे भतीजे सब मिलके मेरे पास आए थे और मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हें बाज कर लूं वरना नताइज अच्छे नहीं रहेंगे। मेरे बेटे मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मैं उठा ना सकूं। मेरे नबी ने महबूब चचा से जब ये सुना तो उनके चेहरे पर गम से एक रंग आता है और दूसरा जाता है। मैंने देखा मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर क्यों ना आते, सभी साथ छोड़ गए और अब चचा भी ये कह रहे हैं। कैसे मेरे नबी हक बात कहना छोड़ दें, ये तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। मेरे नबी ने धीरे से फरमाया, चचा अगर ये मेरे एक हाथ में सूरज रखते और दूसरे में चांद, तब भी मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। अबू तालिब को लगता है अपने भतीजे पे तरस आ गया। उनकी ये कैफियत और ये अजम देखकर अबू तालिब भी पिघल गए। फरमाते हैं, अच्छा तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे इस वक्त अबू तालिब इस कदर अच्छे लगे, तपती धूप में जैसे हवा का ठंडा झोंका, जैसे कोई साइबान हो, जैसे दुश्मन के आगे एक मजबूत दीवार हो। मेरे नबी तो ये सुन के इत्मीनान के साथ वहां से चले गए, मगर अबू तालिब का मसला तो वहीं का वहीं था कि अब करें तो करें क्या। उन्होंने गुलाम को भेजा कि अब्दे मनाफ के दोनों बेटों हाशिम और मुत्तलिब कि जो औलादें हैं, खानदान है, सबको दावत पे बुलाओ। यूं लगता है कि अकेले अब ये अबू तालिब के बस की बात नहीं रही। अब वो दोनों खानदानों को जमा कर रहे हैं कि वो इनके साथ मिलके इनके भतीजे की हिफाजत और हिमायत में इनकी मदद करें। अरे अब जाहिलियत की ये बात मुझे बड़ी पसंद आई कि अपने खानदान के किसी फर्द को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हर हालात में अपनों के साथ खड़े रहने वाले, सिला रहमी करने वाले। हाँ एक बात बड़ी अजीब थी कि अबू लहब इस मौके पे भी अपने भतीजे के साथ नहीं था, बल्कि मुशरिकीन के साथ खड़ा था। मगर आखिर खानदान के बाकी और अफराद कौन से सबके सब मुसलमान थे? इनमें भी तो मुशरिक थे, मुसलमान भी थे कुछ। लेकिन आफरीन है इन पे कि सब ने मिलके अहद कर लिया था कि मेरे नबी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ अबू लहब ऐसा शख्स था जिसने ना तो अपने खानदान की लाज रखी, ना अपने यतीम भतीजे के बारे में कुछ सोचा। अबू तालिब ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे सिवाय इसके कि खानदान को साथ मिलाते, वरना ना तो वहां पे कोई पुलिस है, ना इंसाफ पसंद कोई अदालत है। ऐसे मौके पे यहां तो कबीला ही होता है जो हिफाजत करता है। मैं वहां से निकली तो जिस मजलिस के पास से भी गुजरती थी, वहां पे सरदार किस्म के लोग एक ही टॉपिक पे बात कर रहे थे। सब इस बात पे सख्त तश्वीश में थे कि अब तो बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब सभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पे एक हो गए हैं, सब ने अहद कर लिया है कि वो उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब वो ये सोच रहे थे कि उनके पास क्या रास्ता रह गया। मैंने चलते चलते कुछ लोगों को ये कहते भी सुना कि वो सोच रहे थे कि मेरे नबी को कत्ल कर दें, मगर फिर उनके साथियों ने कहा कि इस तरह तो मक्के की सारी वादी में खून खराबा हो जाएगा। हर तरफ सरदार लोग सर जोड़ के बैठे थे। अभी तक तो उन्होंने कोई भी हरबा छोड़ा नहीं था आजमाए बगैर, मगर वो बेबस थे क्योंकि मेरे नबी का पैगाम तो फैलता ही जा रहा था। बजाय दबने के ये तो और बढ़ रहा था। अबू लहब इनके साथ बैठा था और बराबर मेरे नबी के खिलाफ मुख्तलिफ मंसूबों पर गौर कर रहा था। उधर मैंने देखा अबू तालिब तक जब ये इतला पहुंची कि कुरैश मेरे नबी को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, तो उन्होंने बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को कहला भेजा कि बनू हाशिम की कयाम गाहों में चलते हैं, जो दो पहाड़ों के दरमियान खुली जगह पे थी, जिनको शेबे अबी तालिब कहा जाता था। ये इलाका बैतुल्ला से तकरीबन 1 किलोमीटर पे था। मेरे दिल से बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब के लिए हिदायत की दुआ निकली कि मेरे नबी के दिफा के लिए ये सब इकट्ठे हो गए, चाहे ये मेरे नबी का कलमा पढ़ते हो या नहीं। ये अहद कर चुके हैं कि इनके जीते जी कोई मेरे नबी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने सोचा ये मामला तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, सूरत हाल तो बिगड़ती भी नजर आ रही है, ये हालात तो और बदतरी की तरफ जा रहे हैं। इनसे निकलना कैसे हो गया, कैसे इनसे निकला जाएगा, कोई हल तो नजर नहीं आ रहा। कुफारी कुछ नरम पड़ जाए ऐसा भी दिखाई नहीं देता, और मेरे नबी के हौसले तो बुलंद हैं, उनके पीछे हटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। इसके बाद मैंने देखा वो हुआ जो मक्का की तारीख में कभी नहीं हुआ था। कुरैश ने अपने ही खानदान के लोगों का मुकम्मल बायकॉट कर दिया और इसको लिख कर काबा में लटका दिया। ये क्या है, ये तो ओपन प्रिजन बना दिया गया मुसलमानों के लिए और मेरे नबी के लिए। कुछ दिन तो इन लोगों के पास जो खाने पीने का सामान था उस पे गुजारा चलता रहा है, मगर आखिर तो ये खत्म हो जाना है। फिर क्या करेंगे, कहाँ से खाएं पिएंगे। अबू तालिब जब से यहां आए हैं तब से भी इनकी फिक्र कोई खत्म नहीं हुई। इतने शफीक चचा, मैं देखती हूं जैसे रात होने लगती है, हर रात मेरे नबी से फरमाते हैं जाओ आप सबके सामने जाके अपने बिस्तर पे लेट जाओ, ताकि अगर कोई आपको कत्ल करने का इरादा रखता हो तो वो जान ले कि आप यहां पे हैं। और जब रात थोड़ी हो जाती और सब सो जाते तो अबू तालिब बेचैन रहते, जाके मेरे नबी को उठाते, कहते अब आप दूसरी जगह जाके सो जाएं, और इस खतरे की जगह पे कभी अपने किसी बेटे को सुला देते, कभी भतीजे को, कभी कभी भाई को। अल्लाह हू अकबर, कितने मेहरबान। और मैंने इनके खूबसूरत अशआर भी सुने जो एक कसीदे की सूरत में इन्होंने कहे, ऐसे अशआर तो कभी मैं भुला नहीं सकती, और आज तक मैंने बड़े बड़े शायरों को सुना मगर ऐसी शायरी नहीं सुनी। इन अशआर में भी वो मेरे नबी का साथ कभी ना छोड़ने का अजम जाहिर करते हैं। इस घाटी में जिंदगी इस कदर तंग हो सकती थी ये मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। खाने पीने का सामान ना बाहर से आने का कोई रास्ता था और ना ही यहां पर कुछ था। एक काफला मैंने सुबह आते हुए देखा तो था, जो बाहर से सामान्य तिजारत लाया था, मगर इससे पहले कि वो आगे आते, इन मुशरिकीन ने जल्दी जल्दी जाके सब कुछ खरीद लिया ताकि मुसलमान ना खरीद सके। ये उनको भूखा मारना चाहते हैं। और इस बदबخت वलीद बिन मुगीरा को तो देखो, अपने साथियों से कह रहा था, अगर तुम इन मैसूर लोगों में से किसी को कोई चीज खरीदते देखो तो फौरन तुम कीमत बढ़ाकर खरीद लो, और अगर तुम में से किसी के पास वो चीज खरीदने के लिए रकम ना भी हुई तो भी खरीद लेना, मैं उसकी नकद कीमत तुम्हें अदा कर दूंगा। यानी संगदिली की इंतहा, इतनी बेरहमी। यहां मैसूर लोगों की हालत देखी नहीं जा रही थी, इस कदर तकलीफ दे। मैंने देखा यहां पे कई लोग कीकर और दूसरे दरख्तों के पत्ते खा रहे हैं, क्योंकि खाने पीने की कोई भी चीज मौजूद नहीं। एक काफला मैंने आते हुए देखा तो कुछ उम्मीद बंधी। मैंने देखा एक बाप अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने गया है, तो फौरन ये बदबख्त अबू लहब पहुंच गया और बोला, ऐ ताजरों की जमात, मोहम्मद के साथियों के लिए अपने सामान की कीमत इतनी बढ़ा दो कि वो तुमसे कुछ खरीद ना सके। तुम्हें मेरी मालदारी का भी पता है और वादा निभाने का भी, मैं तुम्हें कोई खसारा नहीं होने दूंगा। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो नफरत से अपना मुंह फेर लिया। ये शख्स कितना पत्थर दिल है, रहम नाम की कोई चीज दूर दूर तक इसमें नहीं। मुझे यहां पर अपने फलस्तीनी बहन भाई याद आ गए। वाकई सच्चे ईमान वालों पर जिंदगी कभी भी आसान नहीं रही। मैंने एक लागर मुसलमान को देखा, वो एक तरफ जा रहे थे, भूख की वजह से उनके लिए चलना भी मुश्किल हो रहा था। यूं लगता था अभी भूख से निढाल होकर गिर पड़ेंगे। इतने में उनको अपने पैर के नीचे कोई चीज महसूस हुई। उन्होंने अंधेरे में ये देखना भी गवारा नहीं किया कि वो क्या चीज है, बस उसको उठाया और निगल गए। एक दिन मैंने देखा ऊंट की खाल का एक खुश्क सा टुकड़ा उनको कहीं घेरा हुआ मिल गया। उन्होंने उसको उठाया, साफ किया, धोया पानी से, फिर उसको आग पे जलाया और पीस के उसका पाउडर बना लिया। हर किसी थकी ही तरह पानी के साथ उसको फांक लिया। मैं देख रही थी, 3 दिन तक थोड़ा थोड़ा करके उसको ही खाते जा रहे हैं। या अल्लाह, इतनी सख्त मुश्किल जिंदगी। हमारे यहां तो दूसरे वक्त का खाना भी, अगर वो ही हो तो घर वाले कहने लगते हैं, पहले भी तो यही खाया था, अब कुछ और होना चाहिए। और इनके यहां फाकों का ये हाल है कि इनकी कमर सीधी भी नहीं हो सकती। इनकी तो दिन भर की तगोदो यही है कि एक निवाला मिल जाए जिससे पेट की भूख को मार सके। मर्द, औरतें, दूध पीते बच्चे, बूढ़े, सब एक ही हालात से गुजर रहे हैं। बड़े तो शायद सब्र करके चुप करके बैठ ही जाएं, मगर मासूम बच्चों को कौन बहलाए, उनको कौन समझाए, उनको तो बस रोना ही आता है। एक बार फिर मैं इनके हालात देखकर बेबसी से एक तरफ बैठ गई। ये कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। यूं लगता है कि ये मुसीबत कभी खत्म नहीं होने वाली। भूख का राज हर तरफ है। एक-एक दिन एक सदी के बराबर लग रहा है। यहां ना दिन कटता है ना रात, और रातें तो इतनी भयानक हो जाती हैं, इसलिए कि बिलकते बच्चों की दिलखराश चीखें सारी फिजा को सोगवार बना देती हैं। खौफ आने लगता है रात से, ये बच्चे सारी रात ना खुद सोते हैं ना किसी को सोने देते हैं, और इनकी रोने की आवाजें दूर दूर तक सुनाई देती हैं। इनको लाख चुप करवाएं मगर भूख इनको चैन नहीं लेने देती। मैंने कुछ लोगों के तो जनाजे भी उठते हुए यहां देखे, भूख और तकलीफ की वजह से वो अल्लाह को प्यारे हो गए। जिंदगी यहां कितनी मुश्किल है इसका शायद कोई अंदाजा भी ना कर सकता हूं, और फिर आगे भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। इनका रोजा वो है जिसका इफ्तार का वक्त आता ही नहीं, और अब तो साल भर गुजर गया है, मैं यही देखती जा रही हूं कहीं कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं ये कैसे खत्म होगा, शायद मैं अपनी ऐनक से देख रही हूं, इसीलिए मुझे लगता है कि जुल्म की ये तारीक रात ऐसी है जिसकी कोई सुबह नहीं। मगर जब अंधेरा गहरा हो जाता है सुबह तभी तो नमूदार होती है। मैं अपने मुताबिक सोच रही हूं और मेरे रब की क्या प्लानिंग है ये वही जानता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सब के सब हलाक हो जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हालात बदलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। साल से ऊपर वक्त गुजर चुका है, हम तो दिन महीने और साल गिनते हैं, और ऐसा लगता है इतना वक्त गुजर गया अब कैसे कोई तब्दीली आ सकती है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। मगर ये मेरी सोच है, मेरा रब बहुत बड़ा है, संग दिलों की इस बस्ती में कोई खुदा तरस लोग भी हैं, चाहे वो काफिर ही हैं, मगर इनमें कुछ ना कुछ इंसानियत बाकी है। मैंने देखा हशाम बिन अमर एक दिन खाने पीने से लड़ते हुए 3 ऊंट लेकर इस तरफ को आया। जब वो इस घाटी के पास पहुंचा तो उसने खामोशी से ऊंटों के सर से नुकेल उतार दी और फिर उनको एक जरब लगाई तो ऊंट दौड़ते हुए इस घाटी में दाखिल हो गए। आगे से भूखे मुसलमानों के लिए तो जैसे ईद हो गई, सब खाने पीने की चीजों को लेने के लिए जमा हो गए, मगर इतने सारे लोगों में 3 ऊंटों के सामान से कितने लोगों का पेट भरना था और कितने दिन के लिए भरना था। मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकली। मुझे लगता था कि हमारी 21वीं सदी में ही इस्लाम पर चलना बड़ा मुश्किल है, हालांकि इनके हालात देख के मुझे लगा कि हम तो बड़े मजे में रहते हैं। मुश्किल वक्त तो इनके लिए है, हमारा तो कोई भी वक्त ऐसा मुश्किल नहीं। तब भी आए दिन हम यही कहते नजर आते हैं, कितना मुश्किल है इस माहौल में इस्लाम पे चलना, कितना मुश्किल है इस माहौल में हिजाब लेना, कितना मुश्किल है इस माहौल में जॉब पे नमाज पढ़ना, कितना मुश्किल है इस माहौल में हराम से बचना। बहुत ही मुश्किल वक्त, बहुत ही मुश्किल वक्त। 21वीं सदी के लोगों को क्या पता मुश्किलात होती क्या है, वो तो आसाइशों में बैठकर और ऐसे बहाने करते हैं। खुदा रहा कभी इन लोगों को तो आके देखें, ये जो अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, ईमान ही इनकी गिजा है, ईमान ही इनका ओढ़ना बिछोना है, इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं। कमजोरी इनकी शक्ल से जाहिर है, जिस्म लागर हो चुके हैं, फिर भी यूं लगता है इनका ईमान इनको चलाए जा रहा है। मैं तो अब दिल ही दिल में एक तरह से शुक्र अदा कर रही थी कि मैं इस जमाने में पैदा नहीं हुई, वरना मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना होता कि मेरा ईमान ही चला जाता, कहीं ऐसा ना होता कि मैं ये मुसीबतें ना झेल पाती और उल्टे पैर फिर जाती, कहीं ऐसा ना होता कि मैं इन बड़े बड़े सरदारों के रोब में आकर उनके साथ मिलके बैठ जाती, कहीं ऐसा ना होता कि मैं पीयर प्रेशर में आ जाती जैसे मैं अपने जमाने में पीयर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर पाती, तो यहां पे कैसे करती। मुझे समझ आ गई थी कि वाकई अल्लाह ताला का जो फैसला है उसी में बेहतरी होती है, चाहे हम अपने लिए कुछ भी चाह रहे हैं, लेकिन वो बेहतर समझता है कि मेरे लिए किस वक्त में दुनिया में आना बेहतर था। और ये तो वाकई चुने हुए लोग हैं जो पहाड़ों से ज्यादा मजबूत हैं, कोई चीज इनको हिला नहीं सकती, और मैं कहाँ खसो खाशाक की तरह, तिनकों की तरह, या उस पत्ते की तरह जिसको हवा जिधर चाहे उड़ाई फिरती है। यहाँ तक आज का एपिसोड है, इंशाअल्लाह ताला कल आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी आखिरी एपिसोड में, अल्लाह ताला हमसे कबूल फरमाए।